सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सवसाहूणं सम्मठजनियवेयण वहि समुत्तिर्णये जिनेनमियुं वेयणमहाहियारं विविहियारं परुहेमो। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित धौला टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य, जिन्होंने श्रीधरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की है। जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है, 12वीं पुस्तक जो चतुर्थ वेदना खंड, उसमें वेदना भाव विधान अनुयोग द्वार के बाद अभी हम चुली का देख रहे हैं और उसमें पृष्ठ संख्या 106 पर आ गए हैं। अब यहाँ भागहार की अवहार की बात चल रही है, तो उसमें हमने देखा था कि जो प्रथम वर्गणा है उसको पहला निषेक कहा था, उसमें परमाणुओं की यहाँ प्रदेश रचना की बात है ना, परमाणुओं की संख्या वो कितनी होती है, तो टोटल नंबर ऑफ जितने परमाणु है उसको डेढ़ गुणहानि से भाग देते हैं तो उसकी संख्या निकलती है। तो ऐसा कहेंगे कि उसका आवहार कितना है तो डेढ़ गुणहानि है। दूसरी वर्गणा का आवहार काल कितना है तो संख्या परमाणु की कम होती है तो भागार बढ़ता चला जाता है तो उसका आवहार काल बढ़ेगा थोड़ा थोड़ा, तो साधिक डेढ़ गुणहानि कहेंगे। ऐसे आगे आगे वाले में वो भागार किस तरह से बढ़ता है उसकी बात चल रही है। 106 पर हमने कल तृतीय वर्गणा के कर्म प्रदेशों की भी बात देखी थी, वहाँ जो डेढ़ गुणहानि हमने 12 मानी थी उससे 13 पॉइंट समथिंग हो जाता है, उसकी भी बात कल आई थी। उसमें जो दूसरे पैराग्राफ है ना बड़ा, उसमें से नीचे से चौथी लाइन जहाँ लिखी यथा वहाँ से पढ़ेंगे तो विषय क्या चल रहा है वो ख्याल में आएगा। देखो, दो अंक कम दो गुणहानि मात्र वर्गणा विशेषों को ग्रहण कर, दो गुणहानि यानी हमने 16 मानी है, दो अंक कम मैंने 14, तो 14 विशेषों को ग्रहण कर यानी 14 चयों को अगर ग्रहण करेंगे तो एक तृतीय वर्गणा का प्रमाण आता है। क्योंकि हमने क्या किया था, पहले में 256 पहले वर्गणा का प्रमाण था वो हमने 12 बार लिखा, तृतीय वर्गणा का हमें चाहिए इसलिए उसमें से 32 घटाएंगे तो 12 तो निषेक आ गए तृतीय वर्गणा के, और 12 बार 32 यानी 24 बार 16 रह गए, बराबर है ना। तो कहते हैं कि यदि हम 14 बार 16 को लेते हैं तो एक पूरी वर्गणा मिल जाती तृतीय वर्गणा, तो हमारे पास कितनी है ऐसी 24 बार है ना 16, तो 24 में कितनी मिलेगी, 14 में एक होगी तो 24 में कितनी होगी, 24/14 हो जाएगी हम। तो कहते हैं तो तीन गुणहानि मात्र वर्गणा विशेषों को ग्रहण कर कितनी तृतीय वर्गणाएं होगी, तीन गुणहानि कहा उसको, 24 को तीन गुणहानि कहा। इस प्रकार प्रमाण से फलगुणित इच्छा को अपवर्तित करने पर साधिक एक अंक आता है, 1 समथिंग है ना, 24/14 एक पूरा जाता है और 10 रहता है, 10/14 रह जाएंगे। शंका, अन्य कितने वर्गणा विशेषों के होने पर द्वितीय अंक उत्पन्न होता है, तो एक पूर्णांक समथिंग है तो पूरे 2 अंक कब हो गए ऐसा कहना चाहते हैं। समाधान, ऐसा पूछने पर उत्तर देते हैं कि 4 अंक कम गुणहानि मात्र अन्य वर्गणा विशेषों के होने पर द्वितीय अंक उत्पन्न होता है, उसका अर्थ समझेंगे। देखो, 4 अंक कम गुणहानि यानी हाँ आठ, अब मैंने आठ मान लिए तो चार कम है, चौथी चौथी वर्गणा में। अब इसको समझाएंगे, देखो इसको डेढ़ गुणहानी में मिलाने पर साधिक एक अंक अधिक डेढ़ गुणहानी भागार होता है। ये ऊपर की बात अभी है क्या? ये खाली शंका समाधान पूछ लिया था उन्होंने। ऊपर जो हमने तृतीय वर्गणा की संबंध में देखा था, तो देखो यहाँ दो गुणहानि आठ दुना सोलह माइनस दो चौदह है, चौदह गुना सोलह तीन सौ चौबीस। तीन सौ चौबीस कैसे आए? दो सौ चौबीस चाहिए, हमारी तृतीय वर्गणा दो सौ चौबीस है ना, दो सौ छप्पन में से बत्तीस गए, सौ चौक सौ से सहा उड़े सोलह के सोलह सा बाईस, दो सौ चौबीस है ना वहाँ। दो सौ चौबीस तृतीय वर्गणा है, फिर उसको आठ गुना तीन यानी चौबीस बार सोलह लिया, क्योंकि हमारे पास इतने बाकी रहते हैं, गुना सोलह वो तीन सौ चौरासी आते हैं, तो चौबीस गुना सोलह तीन सौ चौरासी डिवाइडेड बाय दो सौ चौबीस, वो चौबीस चौदह अंश हमने पहले निकाला था। और बारह की वैल्यू कितनी होती है? एक सौ अड़सठ बाय चौदह, यानी बारह में मिलाना है ना उसको, समझ छेद करके मिलाने के लिए उन्होंने दोनों का छेद समान कर दिया, तो एक सौ अड़सठ डिवाइडेड बाय चौदह प्लस चौबीस बाय चौदह, क्योंकि पूर्व भागहार में इसको मिलाना है। डेढ़ गुणहानि हमारा पहले का भागहार था बारह, अब उसमें वन पॉइंट दस चौदह इतना मिलाया हमने, तो एक सौ बयानवे चौदह अंश आ गए टोटल। इसका समस्त द्रव्य में भाग देने पर तृतीय वर्गणा का प्रमाण ये 224 आता है, तीन हजार बहत्तर डिवाइडेड बाय एक सौ बयानवे बटे चौदह, वो भागार की साइन बराबर करना इज इक्वल टू 224। ये पहले वाला ही गणित उन्होंने बता दिया। अथवा एक क्षेत्र की अपेक्षा बताएंगे अब, डेढ़ गुणहानि मात्र क्षेत्र को स्थापित कर संदृष्टि मूल में देखिए, ऊपर जो दिखा है यानी ऐसे 256 था और ऐसे डेढ़ गुणहानि था, ये 12 और ये 256। अब इसमें से हमें कितना लेना है? 224 लेना है, यानी 16 16 के दो पीसेस निकाले, फिर ये इधर एडजस्ट करेंगे हम, 16 दो 32 आ गए ना, तो हमने कितने लेना है? हाँ इधर इस तरह से एडजस्ट करना, जो हमने 24 दशांश लिया था, 24 चौदह अंश, 24 दशांश नहीं 24 चौदह अंश, इतने ही आएंगे यहाँ पर, पूरा एक अंक 1.10/14 इतना हो जाएंगे, तो वो 12 में मिलाने हमको। देखो वो संदृष्टि की बात बता रहे हैं, डेढ़ गुणहानि मात्र क्षेत्र को स्थापित कर एक एक वर्गणा विशेष के विष्कम्ब रूप और डेढ़ गुणहानि आयाम रूप दो फालियां फाड़कर, 16 16 की दो फालियां निकाली वहां से, दो अंक कम निषेक भागार प्रमाण वर्गणा विशेष विष्कम्ब वाले यानी 14 इंटू 16 और डेढ़ गुणहानि आयाम वाले क्षेत्र के ऊपर रखने पर साधिक एक अधिक डेढ़ गुणहानि भागार होता है, यानी 12 था उसमें साधिक एक मिला दिया। अब चतुर्थ वर्गणा के प्रमाण से सब द्रव्य को अपरत करने पर वह साधिक दो अंक अधिक डेढ़ गुणहानि स्थानांतर काल से अपूर्त होता है, यानी 2 point something आ जाएगा उसका। यथा डेढ़ गुणहानि प्रमाण प्रथम वर्गणाओं को चतुर्थ वर्गणा के प्रमाण से अपहृत करने पर प्रत्येक बार तीन तीन वर्गणा विशेष शेष रहते हैं। हमने देखा था ना, हमने पहले 12 का विरलन किया, हर एक के ऊपर 256 देखे, उसमें से अभी 3 चय घटाना है, क्योंकि चौथी वर्गणा में गए, दूसरी के लिए 1 चय घटाया, तीसरी के लिए 2 चय घटाए, अभी 3 चय घटाएंगे। तो 3 चय ने एक अंक के ऊपर 3 चय आए, ऐसे हमारे पास 12 है, वार्तिक 36 चय आ जाएंगे। अब यहाँ की वर्गणा कितनी है, 256 में से हमने 48 निकाले ना, या 200, अभी हमने 24 देखे थे, 224 में से और 16 कम करेंगे तो कितने रह जाएंगे, 208। तो 208 हमको चाहिए, 256 में से हर एक बार 208 निकाले तो 12 बार तो 208 मिल गए। चयों का प्रमाण कितना रहा, एक एक अंक के प्रति 3-3 चय, ऐसे कितने वार्तिक 36 चय आए, यानी 16 × 36 हमारे पास रह गए। अभी जो 208 है, 208 का प्रमाण कितनी बार 16 लेने से आएगा, 208 को हम भाग देंगे 16 से, 16 × 16 = 48, यानी 13 बार लेते हैं, 13 बार 16 लेते हैं तो हमारा एक वर्गणा मिलेगी, चतुर्थ वर्गणा। और हमारे पास कितने हैं, 36 है, 36 / 13 करना, 36 / 13 कितना रहता है, 26, 2 point, हाँ 10/13, इतने आ गए ना। तो ये मूल 12 में मिलाएंगे हम, तो उन्होंने बताया था साधिक 2, 12 + 2 = 14, पूर्णांक 10/13। अभी इसको समझेंगे, यहाँ पर देखो यथा लिखा है ना, सेकंड लाइन में डेढ़ गुणानि प्रमाण प्रथम वर्गणाओं को चतुर्थ वर्गणा के प्रमाण से अपूर्त करने पर प्रत्येक बार 3-3 वर्गणा विशेष शेष रहते हैं। इस प्रकार अपहृत करने पर डेढ़ गुणानि मात्र चतुर्थ वर्गणाएं प्राप्त होती है, यानी 12 मिली हमको चतुर्थ वर्गणाएं, और शेष कितना रहा, फिर शेष रहे तिगुणी डेढ़ गुणानि मात्र वर्गणा विशेष, तिगुणी डेढ़ गुणानि, डेढ़ गुणानि 12 की है, तिगुणा किया 36, वर्गणा विशेष यानी चय, 36 चय हमारे पास रहे 16-16 वाले, उनको चतुर्थ वर्गणा के प्रमाण से अपहृत करने पर साधिक 2 अंक प्राप्त होते। अभी हमने जो देखा ना साधिक 2 अंक, दो पूर्णांक हमने 10/13 निकाले थे, ये साधिक 2 अंक। पुनः यहाँ अन्य कितने वर्गणा विशेषों के होने पर तृतीय भागहार शलाका प्राप्त होती है, ऐसा पूछने पर कहते हैं कि 9 अंक कम डेढ़ गुणहानि मात्र वर्गणा विशेषों के होने पर तृतीय भागहार शलाका प्राप्त होती है, यानी पूर्ण तीन हो जाने के लिए कब हो जाएगा उसकी बात पूछी। परंतु यहाँ इतना नहीं है, अतएव साधिक 2 अंक मात्र ही प्रक्षेप होता है, इसको यानी यहाँ 39 होते तो 3 अंक हो जाते, परंतु उतना नहीं, हमारे पास 36 ही चय है, इसलिए कम है थोड़े। इसको डेढ़ गुणानी में मिलाने पर साधिक 2 अंक अधिक डेढ़ गुणानिया भागहार होता है, होती है नहीं होता है, वह भी यह है, हमने जो अपूर्णांकों में बोला था 576/208, जिसको हमने 36/13 देखा था, तो ये कितना आता है, 2 × 10/13, 12 में उसको मिला देंगे तो 192/13 आता है। इसका समस्त द्रव्य में भाग देने पर चतुर्थ वर्गणा का प्रमाण, ये 3072 चाहिए, 3072/192/13, हाँ क्यों करना चाहिए नहीं मालूम, ये हम सर्व द्रव्य को भाग देते हैं तभी हमको विशिष्ट वर्गणा का प्रमाण आता है, अभी तक हमने सर्वद्रव्य कितना मान लिया, याद है? देखो पहले गणित में 106 पृष्ठ पर अंतिम लाइन देखना, वहां भी जो हमने भागार निकाला था उससे किसको भाग दिया था? 3072। क्यों? क्योंकि हमने 3072 ये सर्वद्रव्य मान लिया है। ख्याल में आया? अथवा अभी क्षेत्र की अपेक्षा समझाएंगे। डेढ़ गुण हानि प्रमाण क्षेत्र को स्थापित कर, ये ऊपर संदृष्टि देखना कहते हैं, एक एक वर्गणा विशेष के विष्कम्भ रूप व डेढ़ गुण हानि आयाम रूप तीन फालियां फाड़कर, क्योंकि हमने तीन चय घटाए थे ना, तो तीन फालियां निकाली वहां से, उन्हें तीन अंक कम निषेक भागार मात्र विस्तृत, तीन अंक कम यानी 13, निषेक भागार 16 में से तीन अंक कम यानी 13 हो गया, और डेढ़ गुणहानि आयत क्षेत्र के ऊपर रखने पर साधिक दो अंक अधिक डेढ़ गुणहानि भागार होता है। यह अभी हमने जो निकाल के देखा वही शेष जानकर कहना चाहिए। इस प्रकार इस विधि से प्रथम गुणहानि का एक अधिक आधा भाग जाने तक ले जाना चाहिए। वहां की वर्गणा के प्रमाण से सब द्रव्य को अपृत करने पर वह दो गुणहानि स्थानांतर काल से काल के द्वारा अपहृत होता है। यानी हम अभी चार चय मिले ना हमको, तो वहां कितनी होगी भागार कितना होगा, तो कहते दो गुणहानि हो जाएगा। दो गुणहानि यानी कितना? 16 हो जाएगा, क्योंकि पहले हमने कितना देखा था? 12, थोड़ा थोड़ा बढ़ा, फिर साधिक एक बड़ा उसमें ऐड किया, साधिक दो ऐड किए, इस तरह से गए, तो उसमें चार ऐड करेंगे तो 16 हो जाएगा भागार। तो वो कब होता है? आधे में और एक आगे की वर्गणा लेंगे तब। उसको समझाते हैं, आधे भाग तक ले जाना चाहिए। वहां की वर्गणा के प्रमाण से सब द्रव्य को अपहृत करने पर वह दो गुणहानि स्थानांतर काल के द्वारा अपहृत होता है। यथा डेढ़ गुणहानि के विरलन अंक प्रमाण प्रथम वर्गणाओं को यानी 12 बार 256 को वहां की वर्गणा के प्रमाण से अपहृत करने पर, अभी यहां की वर्गणा प्रमाण कितना है? 208 में से और 16 माइनस कर दो, 192 हो जाएगी। तो कहते हैं वहां की वर्गणाओं प्रथम वर्गणाओं को वहां की वर्गणा के प्रमाण से अपहृत करने पर, उसमें से उसको माइनस करने पर प्रत्येक एक के प्रति निषेक भागार के तीन चतुर्थ भाग प्रमाण वर्गणा विशेष अपहृत होते हैं। यानी उसमें से हम इतने चय घटाएंगे तो कितना रहता है? अभी 192 रहेंगे वहां पर, क्योंकि निषेक भागार के तीन चतुर्थ भाग प्रमाण वर्गणा विशेषों से वहां की वर्गणा उत्पन्न होती है। ये 192 हमको चाहिए, तो कितने वर्गणा विशेषों के द्वारा प्राप्त होती है? कितनी बार लेना पड़ेगा हमको? सोलह बारह बार लेना पड़ेगा, डेढ़ गुणहानि बार। तो अभी हम एक एक में कितने चय मिले हमको? चार चार चय मिले। अभी हमारा ये वर्गणा है 192 वाली, तो 192 बारह बार मिले हमको। अब बचे कितने हैं? तो चार चय, यानी 16 का एक चय होता है ना, तो चार चय कितनी बार? 12 बार, बार चौक 48 चय मिल गए हमको, 48 चय है हमारे पास। और कितने चयों की एक वर्गणा होती है? 16 इंटू कितने करने पर? 12। 16 इंटू 12 करने पर, 16 इंटू 12 चार बार करना है ना हमको, हर एक के प्रति हमको चार चार मिले, और ऐसे हमको 12 यानी 16 इंटू 12 एक बार लिए तो एक वर्गणा मिली, दूसरी बार किया दो वर्गणे, हमको चार एडिशनल मिल गए। तो पहले 12 था भागार और अभी चार मिले, पहले 12 थे ना, अभी चार और मिले, 16 हो गए, 192 16 बार हुए। यानी भागार जो डेढ़ गुणहानि 12 था वो बढ़कर अभी 16 हुआ, यानी दो गुणहानि इतना हो गया। देखो इसको फिर पढ़ेंगे। यहाँ ब्रैकेट लिखा है ना उसके ऊपर, यथा से पढ़ेंगे। डेढ़ गुणहानि के विरलन अंक प्रमाण प्रथम वर्गणाओं को हमने पहले क्या किया था, डेढ़ गुणहानि को विरलन किया था, 12 बार एक एक लिखा था और उसमें पूरा 3072 द्रव्य समखंड करके दिया था, तो हर एक के एक के प्रति प्रथम वर्गणा का प्रमाण आया था 256। अभी हमको पांचवी वर्गणा की बात यहाँ चल रही है, तो अभी की वर्गणा 192 है यहाँ वाली, तो उस प्रथम वर्गणाओं को वहाँ की वर्गणा के प्रमाण से अपहृत करने पर प्रत्येक एक के प्रति निषेक भागार के 3/4 प्रमाण वर्गणा विशेष अपहृत होते हैं। उसमें से 192 निकाल लिए हमने। क्योंकि निषेक भागार के 3/4 भाग प्रमाण, निषेक भागार का 3/4 भाग कितना है, 16 का 3/4 कितना आता है, 12 है ना, यानी 12 बार 16 निकलेंगे तो एक वर्गणा मिलती हमको। क्योंकि निषेक भागार के 3/4 भाग प्रमाण वर्गणा विशेषों से, यानी 16 × 12 से वहां की वर्गणा उत्पन्न होती है, 192 उत्पन्न होते हैं, तथा जो प्रत्येक अंक के प्रति निषेक भागार के चतुर्थ भाग प्रमाण वर्गणा विशेष शेष रहते हैं उन्हें भी उसके प्रमाण से करते हैं। हमने 192 निकाल लिया 256 में से, तो वर्गणा विशेष कितने रहे वहां पर, 4 रहे ना वहां पर, हर एक के 4 चय रहे, कितने निषेक भागार के चतुर्थ भाग कहा है, चतुर्थ भाग यानी 4, पहले 3/4 कहा था अब यहाँ चतुर्थ कह रहे हैं। चतुर्थ भाग प्रमाण वर्गणा विशेष ने 4 × 16 उन्हें भी उसके प्रमाण से करते हैं, यथा निषेक भागार के 3/4 भाग प्रमाण वर्गणा विशेषों को यदि डेढ़ गुणहानि भागार होता है, यानी 12 को डेढ़ गुणहानि भागार होता है, निषेक भागार का 3/4 लिखा ना, इतने वर्गणा विशेष, यानी 12 × 16 जहां है वहां भागार 12 है, तो कहते हैं निषेक भागार के चतुर्थ भाग मात्र वर्गणा विशेषों का कितना भागार होगा, वहां 3/4 था अभी 1/4 हुआ, तो भागार भी 1/3 हो गया, तो 4 इसका आया, एक्स्ट्रा 4 मिला ही ना, ओरिजिनल 12 में मिला देंगे हम। इस प्रकार फलगुणित इच्छा राशि को प्रमाण राशि से अपवर्तित करने पर गुणहानि का अर्ध भाग आता है, 4 आ गए। देखो हमने कैसा तैयार किया, निषेक भागार 16 होता है, उसके 3/4 होते हैं 12, 12 बार 16 लेंगे तो उसका निषेक भागार, देखो ऐसा देखा, देखो यहाँ क्या लिखा, निषेक भागार के 3/4 भाग प्रमाण वर्गणा विशेषों का यदि डेढ़ गुणहानि भागार होता है तो निषेक भागार के चतुर्थ भाग मात्र वर्गणा विशेषों का भागार कितना होगा, तो गुणहानि के भागा ने 4 भागार आएगा उसका, उसको डेढ़ गुणहानि में मिलाना, दो गुणहानियां भागार होती है, एक्स्ट्रा भागार निकाला उन्होंने, एडिशनल भागार निकाला ना, इसका समस्त द्रव्य में भाग देने पर डेढ़ गुणहानि 12 है, अभी का भागार और उसमें आधी गुणहानि यानी मिला दी तो पूरे दो गुणहानि हुए, 16 हुए, 3072 को 16 से भाग देते हैं तो 192 है, वो वहां की वर्गणा का प्रमाण है, संदृष्टि में उसका प्रमाण 192 है, ये हमने काल्पनिक संख्या लेकर समझाया है। अथवा अविक्षेत्र से समझाएंगे। डेढ़ गुणहानि प्रमाण क्षेत्र को स्थापित कर चार फालियां करके इनमें से एक एक फाली का विष्कम्भ निषेक भागहार के चतुर्थ भाग प्रमाण होता है, परंतु आयाम डेढ़ गुणहानि प्रमाण होता है। आयाम तो सबका एक और चार फालिया की, 256 की चार फालिया की न, तो एक एक फाली कितने की होगी, 64 की हो गई, 256 को चार में मिलाना है। ये 256 में से ये 64 की एक एक फाली की हमने, अब तीन रखेंगे और एक निकाल देंगे तो 192 आ गए ना। अब ये जो है ये 12 है और ऐसा 64 है, तो हमें कितने इसके प्रमाण चाहिए, 64 तीन बार चाहिए, तो 64 के तीन पीसेस करके यहाँ हम फिट कर सकते हैं उसको। तो 12 को वन थर्ड किया और इसमें मिला दिया, तो 12 ओरिजिनल थे उसमें और एक चार मिला दिए, तो क्षेत्र की अपेक्षा भी 192 एक बाजू आए और एक बाजू 16 आ गए। इसको फिर पढ़ते हैं, क्षेत्र की बात। डेढ़ गुणहानि प्रमाण क्षेत्र को स्थापित कर चार फालियां करके इनमें से एक एक फाली का विष्कम्भ निषेक भागार के चतुर्थ भाग प्रमाण होता है, परंतु आयाम डेढ़ गुणहानि प्रमाण होता है। इनमें से तीन फालियों को छोड़कर, ये समझ में आया, आयाम डेढ़ गुणहानि मात्र होता है। ये हमने 64 की ऐसी चार फालियां की, ऐसा था 64, पर उसकी लंबाई डेढ़ गुणहानि है। अब कहते हैं इनमें से तीन फालियों को छोड़कर, ये तीन फालियां छोड़ क्योंकि हमको 192 चाहिए, इनको छोड़कर अब इसको फाड़कर अलग करेंगे, शेष एक फाली को ग्रहण कर और आयाम की ओर से तीन खंड करके, आयाम यानी वो 12 जो आयाम था उसके तीन खंड किए, तो चार चार वाला एक एक पीस हो गया। आगमानुसार शेष तीन फालियों में जोड़ देने पर, यहां पर जोड़ दिए, यहां से निकालकर यहां जोड़ दिए, दो गुणहानि मात्र आयाम रूप और निषेक भागार के तीन चतुर्थ भाग मात्र वर्गणा विष्कम्भ रूप क्षेत्र होता है। ये अलग अलग नाम देते हैं ना हर बार, दो गुणहानि आयाम रूप यानी वो 16 हो गया, और निषेक भागार का चतुर्थ भाग, चतुर्थ और चार, उतनी मात्र वर्गणा विष्कम्भ रूप क्षेत्र होता है। इस प्रकार इसका अर्थ में समझ में आया, क्या आया समझ में, तीन चतुर्थांश भाग किया। हाँ, बराबर। हाँ, त्रैराशि शासन ज्योमेट्री दोनों है। इस प्रकार समस्त प्रथम गुणहानि जाने पर पूरी पहली गुणहानि चली जाएगी। अब दूसरे गुणहानि में आएंगे तो भागार क्या होगा, देखो द्रव्य आधा होने वाला है तो भागार डबल होगा, तो पहले हमने कितना गुणहानि देखी थी, डेढ़ गुणहानि, अब कितना होगा, डेढ़ से दो गुणा, गुणहानि तीन हो जाएगी ना, तीन गुणहानि हो जाएगी, 12 था उसका 24 हो जाएगा, यानी तीन गुणहानि हो जाएगी। उसी को पढ़ते देखो, इस प्रकार प्रथम गुणहानि जाने पर तीन गुणहानियां भागार होती हैं, यथा चूंकि एक गुणहानि गए हैं, अभी कितनी गुणहानि आगे गए हैं, उतने विरलन करना भी, तो एक अंक रखेंगे, एक में दो लिखेंगे ऊपर, और ओरिजिनल जो भागार था उसको दुगुना करेंगे। तो एक गुणहानि गए है, अतः एक अंक का विरलन कर दुगुना करके परस्पर गुणित करने पर जो राशि उत्पन्न हो, यानी दो ही है ना, गुणा किससे करेंगे, दो आएंगे, उससे डेढ़ गुणहानि को गुणित करने पर तीन गुणहानियां भागार होती है, क्योंकि ये गुणहानियों होती है इसलिए भागार के लिए, ये शब्द ऐसा था होना चाहिए था वाक्य, भागार तीन गुणहानियां होती, ठीक है, परंतु ये समझ में आए ऐसी बात है, नहीं तो हम भागार को लगाते तो भागार होता है कहना पड़ेगा, क्योंकि प्रथम गुणहानि की प्रथम वर्गणा के कर्म प्रदेशों से द्वितीय गुणहानि की प्रथम वर्गणा के कर्म प्रदेश आधे पाए जाते हैं, इसलिए भागार दुगुणा होता है। संदृष्टि में तीन गुणहानि रूप भागार यह है 24, अथवा डेढ़ गुणहानि क्षेत्र को स्थापित कर, ये संदृष्टि मूल में देखना, अन्योन्य अभ्यस्त राशि प्रमाण फालिया करके उनमें से एक फाली के ऊपर, अभी कितनी फालिया करना, अन्योन्य अभ्यस्त राशि यहां की कितनी है, दो, तो दो फालिया करके उनमें से एक फाली के ऊपर शेष फालियों को स्थापित करने पर तीन गुणहानियां भागार होती है, यानी अभी आधा ही करना है ना, पहले हमने इतनी लंबी चौड़ी बात की, अब क्या करना है, दो में ही डिवाइड करना है, और दो में डिवाइड करके ये क्षेत्र शीश के साइड में स्थापित कर देना है, तो 12 और 12 24 हो जाएगी उसकी, ये ख्याल में आता है, इसे आधा करके इसे यहां से जोड़ देना इसको, आगे पढ़ेंगे। इस विधि से क्षेत्र प्ररूपणा और त्रैराशिक क्रम को जानकर जघन्य अनुभाग स्थान की अंतिम वर्गणा तक ले जाना चाहिए। इस प्रकार अवहार प्ररूपणा समाप्त हुई है, यानी हमने वो पहली वर्गणा से शुरू किया था, वो अंतिम वर्गणा तक इसी तरह समझना चाहिए। जैसी अवहार की प्ररूपणा की गई है, वैसी ही भागा भाग की भी प्ररूपणा है, क्योंकि इससे उसमें कोई विशेषता नहीं है। अल्प बहुत्व का कथन करते हैं। उत्कृष्ट वर्गणा में कर्म प्रदेश सबसे स्तोक है, नंबर देना है तो उत्कृष्ट वर्गणा, यानी हमने अनुभाग की अपेक्षा, जो पहली वर्गणा में अनुभाग जघन्य होता है और ऊपर ऊपर बढ़ता है, परंतु प्रदेश नीचे ज्यादा है, अभी प्रदेशों की बात चल रही है, कर्म प्रदेश है ना, उत्कृष्ट वर्गणा में अनुभाग बताता है, जब वर्गणा कहते तो अनुभाग की बात ख्याल में आती कि उत्कृष्ट क्यों कहा, अनुभाग ज्यादा है, और कर्म प्रदेश ने परमाणुओं की संख्या सबसे स्तोक है, उन्होंने हमने संदृष्टि में 9 मान ली है, उनसे जघन्य वर्गणा में कर्म प्रदेश अनंत गुणे हैं, तो पहली वर्गणा में हमने 256 देखे थे, वो अनंत गुणा है। गुणकार क्या है, अभव्य सिद्धों से अनंत गुणी और सिद्धों के अनंत वे भाग मात्र कुछ कम अन्योन्य अभ्यस्त राशि गुणकार है, यानी उसमें गुणहानियां भी जितनी होगी ना, उसको आपस में दो गुणा, यानी दो दो रखकर गुणा करेंगे तो अन्योन्य अभ्यस्त राशि आ जाएगी, उसको यहां गुणकार कहा है, और वो भी अभव्यों से अनंत गुणे हैं और सिद्धों से अनंत विभाग, उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट वर्गणाओं में कर्म प्रदेश, अब ये दोनों को छोड़ दो, पहले भी छोड़ो और लास्ट भी छोड़ो, हमने 3072 टोटल माने थे, तो अंतिम है 9 और पहले 256, 256 प्लस 9 3072 में से माइनस करो, वो सारों के हम क्या कहेंगे, अजघन्य अनुत्कृष्ट, तो वो कर्म प्रदेश अनंत गुणे हैं, तो 2807 उसका प्रमाण है। गुणकार क्या है? कुछ कम डेढ़ गुणहानिया गुणकार है। 256 अगर हम रखते तो डेढ़ गुणहानि गुणकार आता। अब यहाँ हम किससे गुणा कर रहे हैं? 256 प्लस 256 से आगे चले ना, पूरे 9 होते उसमें ऐड, 3072 की टोटल को अगर हम 256 से भाग देंगे तो 12 आएंगे डेढ़ गुणहानिया। परंतु अभी हमारी संख्या कितनी है? 2807, इसलिए भागहार भी जो उससे कुछ कम है उनसे। अभी यहाँ चौथे नंबर पर उनसे अप्रथम वर्गणाओं में कर्म प्रदेश विशेष अधिक है। अप्रथम मैंने 3072 में से 256 माइनस कर दो, उसको हम कहेंगे अप्रथम, जो प्रथम को छोड़कर अन्य, तो वो विशेष अधिक है। गुणकार का प्रमाण, गुणकार का टोटल भी उतने ही कहेंगे हम, फिर भी गुणकार का 256 से ये कितने गुना है, तो डेढ़ गुणहानि में वो बताया उसको। अब अप्रथम वर्गणाओं में कर्म प्रदेश विशेष अधिक है। विशेष का प्रमाण कितना है? उत्कृष्ट वर्गणा के बराबर है। 2807 में 9 मिला दिए हमने। अब पांचवे नंबर पर उनसे अनुत्कृष्ट वर्गणाओं में कर्म प्रदेश विशेष अधिक है। अनुत्कृष्ट ने 3072 में से 9 माइनस करो, या अभी हम कहाँ तक आए थे? 2816 तक आए थे, हाँ, तो उसमें 9 माइनस करो और 256 मिला दो। विशेष कितना है? उत्कृष्ट वर्गणा के कर्म प्रदेशों से हीन प्रथम वर्गणा के कर्म प्रदेशों से बराबर है। 256 में से 9 माइनस कर दो, 247, और वो 2816 में मिला दो। अब छठे पॉइंट पर उनसे सब वर्गणाओं में कर्म प्रदेश विशेष अधिक है, तो 3072 सब वर्गणा में विशेष अधिक है। विशेष कितना है? उत्कृष्ट वर्गणा के कर्म प्रदेशों के बराबर, यानी 9 एक्स्ट्रा है ना उसमें। इसी प्रकार द्विचरमादि अनुभाग बंध स्थानों का भी कथन करना चाहिए। विशेष इतना है कि जघन्य बंध स्थान से द्वितीय बंध स्थान अनंत गुणा है, उससे तृतीय बंध स्थान अनंत गुणा है। इस प्रकार अपूर्व करण संयत तक ले जाना चाहिए। हम उल्टा आ रहे हैं ना, बंद की बात चल रही है, मिनिमम बंद कहाँ पर है? हाँ, सूक्ष्म सांप्रदाय के अंतिम समय तक। तो ऐसे हम उल्टा लौट रहे, अपूर्व करण के वहां तक ले आना चाहिए। उसके आगे के अनुभाग बंद स्थान, उत्कृष्ट अनुभाग बंद स्थान तक 6 प्रकार की वृद्धि से जाते हैं। 6 प्रकार की वृद्धि ने वो षट स्थान पति तो वृद्धि जिसको हम कहते हैं। पहले हमने कहा कैसे देखा था, जगन्य से द्वितीय स्थान अनंत गुणा, उससे तृतीय स्थान अनंत गुणा, उससे तृतीय स्थान अनंत गुणा, अनंत गुणा अनंत गुणा क्रम था। अपूर्व करण के नीचे अभी आएंगे तो क्या है, अनंत गुणा नहीं होगा डायरेक्ट, अनंत भाग वृद्धि इतने स्थान चले जाएंगे, फिर असंख्यात भाग वृद्धि वगैरह वगैरह, तो जाकर एक बार अनंत गुणा वृद्धि होगी, फिर दूसरी बार हो जाएगी, उसके बीच में इतने असंख्यात स्थान चले जाते हैं। ख्याल में आता है ना, क्योंकि ये जो एकदम टॉप मोस्ट, क्योंकि वहां क्या है, हम ऐसा देखेंगे कि जो अपूर्व करण गुण स्थान है, फिर अनिवृत्ति करण है और सूक्ष्म सांप्राय है, उसमें विशुद्धि कितनी अनंत गुणी अनंत गुणी अनंत गुणी बढ़ती है, तो वहां का अनुभाग बंद भी अनंतवा भाग होता है। इसलिए हम वहां से देख रहे हैं अनुभाग बंद के जघन्य स्थान कहां पर है, तो सूक्ष्म सांप्राय के अंतिम समय में, अभी उसका एक समय पहले आओ, फिर और एक समय पूर्व में आओ, इस तरह से वहाँ का अनुभाग कितना है उसको हम दूसरा बंधस्थान कहेंगे, जघन्य की ओर से तीसरा बंधस्थान, चौथा बंधस्थान, वो अनंत गुणा अनंत गुणा है। और अपूर्वकरण के बाद अगर हम आगे की बात देखेंगे तो वहाँ षट्स्थान वृद्धि होती है। ज्यादा है क्योंकि ऊपर अनुभाग कम बन रहे हैं, नीचे ज्यादा बन रहे हैं। हम उल्टा आए ना अभी, तो अनुभाग कम बन रहे हैं। हम ऊपर से आए ना अभी लौट कर, अभी और नीचे चलना है अपने को। हाँ, नीचे के गुण स्थानों तक देखो, षट्स्थान प्रकार की वृद्धि से जाते। चौथी लाइन, जघन्य स्थान को छोड़कर शेष सब स्थानों में जघन्य वर्गणा व जघन्य स्पर्धक के अविभाग प्रतिच्छेदों से उत्कृष्ट वर्गणा व उत्कृष्ट स्पर्धक के अविभाग प्रतिच्छेद अनंत गुणे हैं। गुणकार क्या है? गुणकार सब जीवों से अनंत गुणा है, स्पर्धकांतर विसदृश है। सब स्थानों में, अन्य सभी स्थानों में जघन्य वर्गणा से उत्कृष्ट जघन्य वर्गणा और जघन्य स्पर्धक के अविभाग प्रतिच्छेदों से, यानी बाकी सभी में एप्लीकेबल है। जघन्य स्थान को इसमें से नहीं लिया है। जघन्य स्थानों कहाँ का लिखा? जघन्य स्थान को छोड़कर, मतलब स्थानों को नहीं। जघन्य एक ही स्थान को जघन्य कहते हैं, बाकी सब अजघन्य कहेंगे, हम उल्टे आए ना। स्पर्धकांतर विसदृश है क्योंकि छह प्रकार की वृद्धि द्वारा अनुभाग बंध की वृद्धि देखी जाती है। इसी प्रकार से हत समुत्पत्तिक और हतहत समुत्पत्तिक स्थानों के भी अविभाग प्रतिच्छेदों की प्ररूपणा करनी चाहिए। इस प्रकार अविभाग प्रतिच्छेद प्ररूपणा समाप्त हुई। अब आगे का सूत्र, ठाण परुवणदाय केवड़ियानी ठाणानी असंख्यज्य लोगट ठाणानी एवड़ियानी ठाणानी। स्थान प्ररूपणता से स्थान कितने हैं, असंख्यात लोक प्रमाण है, इतने स्थान हैं। स्थान किसे कहते हैं? एक जीव में एक समय में जो कर्मानुभाग दिखता है उसे स्थान कहते हैं। वह स्थान दो प्रकार का है, अनुभाग बंध स्थान और अनुभाग सत्व स्थान। बंधने वाला अनुभाग कितना है उसको अनुभाग बंध स्थान कहेंगे, और सत्ता में जो पड़ा है अनुभाग उसको अनुभाग सत्व स्थान कहेंगे। उनमें से जो बंध से उत्पन्न होता है वह बंध स्थान कहा जाता है। पूर्वबद्ध अनुभाग का घात किए जाने पर जो बंध अनुभाग के सदृश होकर पड़ता, बंध अनुभाग के सदृश होकर पड़ता है वह भी बंध स्थान ही है। क्या कहते हैं? अभी जो पहले में बंधा है, सत्ता में पड़ा है, और सत्ता में पड़े पड़े उसका घात होकर अभी जो बंधने वाले अनुभाग के समान हो गया, तो भी हम उसको क्या कहेंगे? वो बंध स्थान जैसे ही कहेंगे, उसको भी बंध स्थान कहेंगे, क्योंकि उसके सदृश अनुभाग बंध पाया जाता है। यानी सत्ता वाला जो बंध अनुभाग बंध के समान है उसको भी वो बंध स्थान में गिनेंगे। समानता है ना दोनों में। घाता जाने वाला जो अनुभाग स्थान बंधानुभाग के सदृश नहीं होता किंतु बंध सदृश अष्टांग और उर्वंग के मध्य में। अष्टांग किसे कहते याद है? अनंत गुणी वृद्धि। और उर्वंग यानी अनंत भाग वृद्धि। मध्य में क्या कहते हैं? किंतु बंध सदृश अष्टांग और उर्वंग के मध्य में अधस्तन उर्वंक से अनंत गुणा और ऊपरी अष्टांग से अनंत गुणाहीन होकर स्थित रहता है, वह अनुभाग सत्कर्म स्थान है, यानी सत्ता में पड़ा हुआ है। यानी जो ऑलरेडी जो बंधा था और उसमें जो घात हो गया है, सत्ता का भी घात होता है ना, अकेले बंध का नहीं होता, सत्ता में पड़े पड़े अनुभाग का घात होता है, उसकी बात चल रही है। उर्वंग कहने अनंत वा भाग और अष्टांग कहने अनंत गुणा, वृद्धि की बात होगी तो वृद्धि, हानि की बात होगी तो हानि। हाँ, यहाँ पहले वृद्धि मध्य में लिखा ना, अधस्तन उर्वंक से अनंत गुणा अधिक और ऊपर के अष्टांग से अनंत गुणा हीन, ऐसा लिया उन्होंने विशिष्ट। अभी चौथी लाइन के अंत में, अनुभाग बंध स्थान और सत कर्म स्थान असंख्यात लोक मात्र होते हैं, यानी सत्ता के स्थान और बंध के स्थान, अनुभाग के अपेक्षा बात चल रही है। यहां अनुभाग स्थान, अनुभाग बंध स्थान और सत कर्म स्थान ऐसा कहने पर एक जीव में अवस्थित कर्म परमाणुओं में जो उत्कृष्ट अनुभाग सहित कर्म परमाणु है वही स्थान होता है। स्थान किसको कहा? किसी पर्टिकुलर एक जीव के परमाणु में जो अनुभाग है, अलग अलग परमाणुओं में अलग अलग है, हमने देखा था ना, तो मैक्सिमम अनुभाग वाला जो परमाणु है उसके अनुभाग को यहाँ स्थान कहा है। पहले उन्होंने देखा था कि वो उसी को स्थान घटाया था एक परमाणु के अनुभाग पर, उसका कारण भी बताते हैं, क्योंकि भिन्न परमाणुओं में स्थित अनुभागों की विवक्षित परमाणुओं में स्थित अनुभाग के साथ प्रवृत्ति न होने से बुद्धि से एकता को प्राप्त हुए उनकी एक स्थानता का विरोध है। यानी उसको सबको मिलकर एक स्थान नहीं कहना है, विशिष्ट कर्म परमाणु जिसमें मैक्सिमम अनुभाग है उसी को यहाँ स्थान ऐसा कहा है। देखो पहले भी हमने जघन्य स्थान किसको कहा था याद है? निकालो, अट्ठानव पृष्ठ निकालना, लास्ट लाइन। देखो लास्ट लाइन ऊपर जैसे जरा शुरू करते थे, लास्ट सेकंड बट लास्ट, यहाँ अंतिम स्पर्धक की अंतिम वर्गणा संबंधी एक परमाणु में स्थित अनुभाग जघन्य स्थान रूप है। हमने अलग अलग स्पर्धक देखे थे ना वहां, उसको जघन्य स्थान कहा। जगन यानी अभी उसमें से अभी हमने जो संदृष्टि देखी थी उसी पृष्ठ पर देखो 99 पर, तो वहां किसको कहेंगे? हाँ, जगन्य, जगन्य स्थान किसको कहेंगे? अनुभाग जगन्य स्थान संदृष्टि में से। इक्यावन वाला अंतिम स्पर्धक की अंतिम वर्गणा का परमाणु, आठ वाला नहीं लेना, इक्यावन वाला ही लेना है। अभी जगन्य में कैसा लेना, ये इक्यावन ही जगन्य हो जाएगा, अभी इससे भी ज्यादा हो जाएगी कहीं। याद देखो ना, अंतिम स्पर्धक की अंतिम वर्गणा संबंधी ये हमने आठ है वो मिनिमम पॉसिबल से शुरू किया था। मिनिमम पॉसिबल से शुरू करके उसमें स्पर्धक अंतिम स्पर्धक में कितना आता है तो 51 आता है, तो वो जघन्य स्थान हुआ। ये बात है वहां पर। अभी किसी अन्य जीव में वो आठ से शुरू नहीं हो गया और ज्यादा से हो गए और फिर उसके अंतिम परमाणु और ज्यादा हो जाएगा। यहाँ क्या लिखा है, एक जीव में अवस्थित कर्म परमाणुओं में जो उत्कृष्ट अनुभाग सहित कर्म परमाणु है वही स्थान है। वही स्थान कहा, वही उत्कृष्ट स्थान नहीं कहा, उसको स्थान कहा है। उत्कृष्ट स्थान कहाँ कहा, जैसे अभी हमने देखा, हमने जो अभी संदृष्टि देखी थी 99 पृष्ठ पर, उसमें उत्कृष्ट अनुभाग वाला परमाणु कौन सा था, 51 नंबर वाला था। उसको स्थान कहा क्योंकि वो जघन्य से शुरू हुआ था 8, 9, 10 वगैरह से, इसलिए उस परमाणु के जो 51 नंबर हमने देखा था, 51 अनुभाग, उसको हम जघन्य स्थान कहेंगे। पर किसी भी जीव में हमको स्थान, अनुभाग का स्थान कौन सा है, तो उसमें जो उत्कृष्ट पॉसिबल है यानी अंतिम स्पर्धक के अंतिम वर्गणा का एक परमाणु का अविभाग प्रतिच्छेद है, उसको हम उसका स्थान कहेंगे। अब इन स्थानों में जघन्य उत्कृष्ट लगा लो, अभी हमने 51 वाला जघन्य कहा, तो उसके ऊपर बढ़ाते रहो, वो उत्कृष्ट हो जाएगा। समझ रहे, स्थान किसको कहना, तो एक परमाणु मैक्सिमम पॉसिबल जो एक परमाणु है उसको हमने स्थान कहा। मिनिमम वाले को वो तो जघन्य वर्गणा का विभाग प्रतिच्छेद कहेंगे हम उसको, पर उसको स्थान संज्ञा नहीं है। स्थान किसको कहना, देखो फिर इसकी परिभाषा। हाँ देखो, फिर एक जीव में अवस्थित यानी रहने वाले कर्म परमाणुओं में जो उत्कृष्ट अनुभाग सहित कर्म परमाणु है वही स्थान होता है, उसको स्थान ऐसा कहते हैं। अब आगे, क्योंकि भिन्न परमाणुओं में स्थित अनुभागों की विवक्षित परमाणुओं में स्थित अनुभाग के साथ प्रवृत्ति न होने से, क्योंकि हर एक परमाणु में अपने अपना अनुभाग अलग अलग है, एकता को बुद्धि से एकता को प्राप्त हुए उनकी एक स्थानता का विरोध है। सब मिलकर एक स्थान नहीं कहते, उन्होंने पहले भी ये बात बताई थी। योग स्थानों में हमने सबका मिलकर एक स्थान कहा था, वो बात यहाँ नहीं है। हाँ। शंका, उदयगत निषेक की बात मत करना। हाँ, अभी आपका प्रश्न पूछना पहले। उदयगत निषेक तो रचना है, स्थिति बताने वाला है। हाँ अब हाँ, उदय अपेक्षा यहाँ बंधकी और सत्ता की बात चल रही है, अभी यहाँ बंधने की बात चल रही है। वो उत्कृष्ट वाले को स्थान कहेंगे हम, स्थान उसको कहेंगे। आपका कहना है उत्कृष्ट और जघन्य दोनों ओर के निकल के जो एवरेज, वहां एवरेज समझो ना, वहां उसका जो एवरेज होगा उसका फल मिलेगा। वहां पर अलग अलग परमाणुओं में अलग अलग अनुभाग है, ये उदय रूप की यहाँ बात नहीं हो रही, अभी यहाँ स्थान किसको कहना उसकी बात चल रही है। वो तो हमने रचना देखी थी, वो क्षपक श्रेणी में देखी थी। हाँ हाँ क्योंकि हमने वहाँ देखी थी ना, जघन्य की ओर बढ़ता है उसका उदय। स्थान की बात चल रही है, उदय जब होता है तो उदय में तो वो सारा वेरिएशन है ना, उत्कृष्ट वाला उत्कृष्ट फल देगा, जघन्य वाला उसका जघन्य फल है, परंतु टोटल एग्रीगेट तो मिलेगा ना उसमें। अब शंका का देखो, यदि एक परमाणु में स्थान होता है तो उनमें अनंत वर्गणा और स्पर्धकों का अभाव होता है, तो अन्य परमाणुओं का क्या हो गया, यहां मैंने इतने वर्गणा और स्पर्धक देखे अनंत अनंत। समाधान, ऐसा कहने पर उत्तर देते हैं कि नहीं, क्योंकि स्पर्धक और वर्गणा संज्ञा वाले सभी अनुभाग वहाँ ही पाए जाते हैं। उत्कृष्ट में हम जहाँ हमारे पास 1 करोड़ रुपया है, तो पहले हमने 1-1 रुपया देखा, 10-10 रुपये देखे, 100-100 रुपये देखे, 1000-1000 रुपये, वो सब उसमें गर्भित है, ऐसा कहते हैं। शंका, श के ऊपर बिंदी लगाओ। अन्यत्र यह व्यवहार प्रसिद्ध नहीं है, कहते वो तो हमने योगस्थान वगैरह ऐसी तो बात नहीं देखी थी। समाधान, नहीं, क्योंकि स्थिति प्ररूपणा में अंतिम निषेक में एक परमाणु काल को ही ग्रहण कर उत्कृष्ट स्थिति की प्ररूपणा देखी जाती है। हम जब जब कहते हैं कि कितनी स्थिति बांधी, तो फट मैक्सिमम हम बता देते 70 कोड़ाकोड़ी की बांधी, तो क्या 70 कोड़ाकोड़ी अनंत परमाणु एक समय में ग्रहण करता है, तो क्या सभी परमाणुओं की स्थिति 70 कोड़ाकोड़ी होती है? कहाँ से कहाँ तक होती है? हाँ, तो 3000 वर्ष और एक समय से लेकर, ये सॉरी वहाँ 7000 लेना, 70 कोड़ाकोड़ी लिया है ना, ज्ञानावरण में 3000 लेना, तो किसी परमाणु में इतनी है, 7000 वर्ष प्लस एक समय प्लस दो समय प्लस तीन समय, वहाँ से लेकर वो अंतिम तक, फिर भी हमने कितनी स्थिति बांधी तो अंतिम का नाम लेते हैं। वैसे यहाँ अनुभाग कितना बांधा तो अंतिम का नाम लेना, ख्याल है ना? हाँ। परमाणु काल संकलन सजाति व विजाति स्वरूप नहीं ग्रहण की जाती है, क्योंकि वैसा होने पर काल की अनंतता का, वो बराबर करना, अनंतों का हो गया है, अनंतता करना, उसको उनतो निकालना और अनंतता, अनंतता का नहीं हो सकता, अनंतता का आनंतीय प्रसंगा दो। देखो क्या कहते हैं, परमाणु काल संकलना सजाति व विजाति स्वरूप नहीं ग्रहण की जाती, क्योंकि वैसा होने पर काल की अनंतता का प्रसंग आता है। यानी हर एक का काल अलग अलग गिनकर सबको ऐड नहीं करेंगे हम, यदि कहा जाए कि शेष प्ररूपणा निष्फल है, सो भी बात नहीं है, क्योंकि विवक्षित अनुभाग परमाणु के साथ अविनाभाव रखने वाले अनुभाग की प्ररूपणा द्वारा प्रकृति की ही प्ररूपणा सफल है। यानी अन्य अन्य अनुभाग वाले अन्य अन्य परमाणु भी है वहां पर, वो सारे ही अनुभाग ही उत्कृष्ट में गर्भित है, इसलिए उत्कृष्ट की ही बात करेंगे वहां पर। शंका, परमाणु काल संकलन है, नहीं संकलन है उसकी एडिशन, उसकी टोटल, वो तो उसको हर एक को अलग अलग नहीं गिनते हम, उसकी एडिशन नहीं करेंगे, अंतिम में सब गर्भित है ना। हाँ। फिर शंका, एक ही परमाणु से यदि एक स्थान उत्पन्न होता है तो एक समय में एक जीव में स्थानों की अनंतता का प्रसंग आता है, या है ना अनंतता शब्द ऊपर ऐसा ही करना था, क्या कहते हैं, एक समय में जीव अनंत कर्म परमाणु ग्रहण करता है और उसमें हर एक में अनुभाग अलग अलग होगा, तो कहेंगे उसके अनंत स्थान बांधे, ऐसा कहना पड़ेगा। समाधान, यदि ऐसा ग्रहण करते हैं तो सचमुच में सब अनंत स्थान होते हैं, परंतु ऐसा है नहीं, क्योंकि द्रव्यार्थिक नय का अवलंबन है। वह इस प्रकार से, समान धन वाले परमाणुओं का तो ग्रहण हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनके अनुभाग की समानता होने से विवक्षित के साथ एकता को चाहिए प्राप्त हुआ, वह वहां ही पाया जाता है। क्या कहना चाहते हैं, प्रश्नकार ने पूछा था कि अनंत कर्म परमाणु बनते हैं और सब में अलग अलग अनुभाग है, तो अनंतता का प्रसंग आएगा, तो कहते इस पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा एक एक परमाणु की बात करेंगे तो भले हो, परंतु द्रव्यार्थिक नय का कथन है। अब उसमें भी समझा रहे हैं। अब मान लेते हैं कि हमने वो 8 अनुभाग वाले परमाणु देखे थे, तो 8 अनुभाग हम एक ही बार स्वीकार करेंगे? 8 वालों के अलग अलग परमाणु को अलग अलग स्थान तो नहीं कहेंगे, क्योंकि सब में समान है। तो वही कहते, क्या कहते हैं, देखो, समान धन वाले यानी समान अनुभाग वाले परमाणुओं का तो ग्रहण हो नहीं सकता, क्योंकि उनके अनुभाग की समानता होने से विवक्षित के साथ एकता को प्राप्त हुआ वह वहां ही पाया जाता है। यानी जब हम कहेंगे 8 वाला स्थान, तो उसमें वो सब परमाणु है, सबको अलग अलग तो नहीं ग्रहण करेंगे। असमान धन वाले परमाणुओं का भी ग्रहण नहीं हो सकता। आप कहेंगे एक 8 वाला लो, एक 9 वाला, एक 10 वाला ले दो, तो कहते वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि जिस प्रकार एक आदि संख्याएं शत संख्या में पाई जाती है, जब हमने 100 कह दिया तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 99 और 100 सभी उसमें आती है। उसी प्रकार अधस्तन अनुभाग उत्कृष्ट अनुभाग में पाए जाते हैं। अभी हमने उस संदृष्टि में 51 नंबर देखा था, अनुभाग 51 है, तो उसमें वो 8, 9, 10 सभी अनुभाग उसमें गर्भित आ गए। शंका, यहां द्रव्यार्थिक नय का अवलंबन है, यह कैसे जाना जाता है? उसका समाधान, अपकर्षण व उत्कर्षण द्वारा स्थान की हानि व वृद्धि का अभाव होने से सत्व के नीचे अनुभाग के बांधे जाने पर अनुभाग स्थान वृद्धि के न पाए जाने से सत्व की अपेक्षा एक समय में अनंत भाग वृद्धि द्वारा बंद के होने पर भी अनुभाग वृद्धि के देखे जाने से तथा गुणित कर्मांशिक से अन्य जीव में उत्कृष्ट अनुभाग के अभाव की आपत्ति आने से जाना जाता है कि यहाँ द्रव्यार्थिक नय का अवलंबन है। यदि हम द्रव्यार्थिक नय का अवलंबन नहीं लेते हैं, तो ये जो अलग अलग जीव उन्होंने बता दिए हैं, तो उसमें वेरिएशन हो जाएगा। इसलिए सामान्य कथन है यहाँ पर। इसके अतिरिक्त समान व असमान धन वाले पुद्गलों को ग्रहण करने पर सब जीव राशि के प्रतिभाग रूप अनंत भाग से अधिकता भी घटित नहीं होती, क्योंकि उसमें विरोध है। वह क्या कहना चाहते हैं कि ये सब परमाणुओं को अलग अलग नहीं ग्रहण किया है, द्रव्यार्थिक नय का अवलंबन करने पर ये जो मैक्सिमम अनुभाग वाला है उसी को यहाँ स्थान ऐसा कहने में आता है। इस प्रकार असंख्यात लोकमात्र स्थानों में से, अभी स्थान का अर्थ क्या है, जो जो जब पॉसिबल है तो उत्कृष्ट अनुभाग वाला वो परमाणु होगा उसको स्थान कहेंगे। ऐसे स्थान कितने हैं? तो असंख्यात लोक परमाणु। तो असंख्यात लोक मात्र स्थानों में से प्रत्येक के स्वरूप की प्ररूपणा करनी चाहिए। इस प्रकार स्थान प्ररूपणा समाप्त हुई। अब अंतर परुवणदाय एकैकस्य ठाणस्य केवड़ियम अंतरम, र के ऊपर बिंदी चाहिए, केवड़ियम अंतरम। सव जीवे ही अनंत गुणम, एवड़ियम अंतरम, हाँ आया ना अंतरम, वैसा नीचे पढ़ते हैं। अंतर प्ररूपणा में एक एक स्थान का अंतर कितना है? देखो पहले हमने अंतर किस में देखा था, स्पर्धक की वर्गणाएं होती है तो अंतर छोड़कर दूसरा स्पर्धक शुरू होता है, वो अंतर यहाँ नहीं इष्ट। यहाँ किस अंतर की बात करते हैं? हमने देखा था ना स्थान किसको कहते हैं, तो जीव के सत्ता में जो कर्म परमाणु है उसमें से मैक्सिमम अनुभाग वाला कर्म परमाणु को स्थान कहा। कोई उससे अधिक वाला स्थान या कम वाला स्थान, अगर हम जघन्य से हम शुरू करते हैं तो उससे अधिक वाला दूसरा स्थान है, तो वो अधिक वाला स्थान उससे कितने ज्यादा है, तीसरा स्थान, चौथा स्थान, पांचवा स्थान। एक एक अविभाग प्रतिच्छेद से एक एक स्थान नहीं कहा, वो तो वर्गणा वर्गणा प्रति एक एक अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ता है, परंतु जिसको हम स्थान कहते हैं वो एक एक अविभाग प्रतिच्छेद से नहीं बढ़ रहा है, तो कितने से बढ़ रहा है, उसको हम अंतर कहेंगे। तो देखो अभी पढ़ेंगे इसको। अंतर प्ररूपणा में एक एक स्थान का अंतर कितना है? तो कहते हैं सब जीवों से अनंत गुना है, इतना अंतर है। एक स्थान से दूसरा स्थान में अविभाग प्रतिच्छेद कितने गुना हो गया? तो जीवों से, जीव राशि से अनंत गुना। वो जीवों से, वो पर बिंदी लगाना, जीवों से चाहिए शंका। असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग बंध स्थान और क्या हुआ? असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग बंध स्थान और स्व स्थानों की प्ररूपणा की जा चुकी है। इसी प्ररूपणा से जाना जाता है कि स्थानों में अंतर है, क्योंकि इसके बिना स्थान भेद घटित नहीं होता। इस कारण अंतर प्ररूपणा निष्फल है। क्या कहते हैं, पहले में हमने देखे थे ना, वो स्व स्थान भी देखे थे और फिर हाँ वो स्थान भी बताए थे उन्होंने, असंख्यात लोक प्रमाण। समाधान, वह निष्फल नहीं है क्योंकि अंतर के प्रमाण की प्ररूपणा द्वारा उसकी सफलता देखी जाती है। यहां पर उसका प्रमाण बताना है, कारण कि स्थान भेद के जान लेने मात्र से अंतर का प्रमाण नहीं जाना जाता। वहां तो हमने स्थानों के अलग अलग भेद देखे थे, परंतु वो कितना अंतर है बीच में वो तो वहां पता नहीं चला था, क्योंकि वैसा पाया नहीं जाता। दूसरे, स्थानों का अंतर होना ही चाहिए ऐसा नियम भी नहीं है, क्योंकि एक एक अविभाग प्रतिच्छेद की अधिकता के क्रम से गए हुए भी स्थानों की स्थान रूपता में कोई विरोध नहीं है। यानी ऐसे भी कोई स्थान पाए जाएंगे, कहते ऊपर के हमने जघन्य से शुरुआत की थी, वहां तो अनंत गुणा हो गए, सूक्ष्म साम्राज्य के अंत समय फिर आगे नीचे नीचे आ गए तो अनंत गुणा, तो कहीं कहीं पर एक एक अविभाग प्रतिच्छेद का भी डिफरेंस पाया जाएगा ऐसा कहते हैं। शंका, स्थानांतर किसे कहते हैं? समाधान, उपरीन स्थानों में से अधस्तन स्थान को घटाकर एक कम करने पर जो प्राप्त हो वह स्थानों का अंतर कहा जाता है। उसमें जो जघन्य स्थानांतर है वह भी सब जीवों से अनंत गुणा है, क्योंकि एक अनंत भाग वृद्धि प्रक्षेप में भी सब जीवों से अनंत गुणे मात्र विभाग प्रतिच्छेद पाए जाते हैं। देखो क्या कहते हैं, जघन्य जो स्थानांतर है, मिनिमम पॉसिबल स्थानांतर जो है जिसमें अनंत भाग की वृद्धि पाई जाती है, वो वृद्धि भी कितनी है, तो उसमें भी, वो वृद्धि में भी जीवों से अनंत गुणे अविभाग प्रतिच्छेद पाए जाते हैं। यहाँ अनुभाग बंध स्थानों के अंतर योग स्थान अंतरों के समान सदृश नहीं होते हैं। क्या कहना चाहते हैं, योग स्थानों के अंतर हमने देखे थे तो उसमें ध्रुव वृद्धि होती थी, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान में वो सूच्चंगुल के असंख्यात विभाग इतना योग बढ़ता था उसके अविभाग प्रतिच्छेद, परंतु यहाँ ध्रुव वृद्धि नहीं है। वहां हमने देखा उतनी 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 वृद्धि होती थी, तब जाके एक अपूर्व स्पर्धक होता था, फिर वो वृद्धि बढ़ती जाती है, तब वो स्थान दुगुना होता था, फिर दुगुना से भी दुगुना होता था, क्योंकि वो वृद्धि समान समान होती थी। अब यहां दूसरी बात बता रहे कि योग स्थान उनके समान सदृश नहीं होते, क्योंकि योग स्थान प्रक्षेपों के समान अनुभाग स्थान प्रक्षेपों में सदृशता का अभाव है। प्रक्षेप यानी उसमें एडिशन, वहां तो प्रक्षेप समान 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 होता था, यहां वैसा नहीं है। अथवा अनुभाग स्थानों में छह प्रकार की वृद्धि देखे जाने से अनुभाग स्थानांतरों में सदृशता नहीं है। कि क्या कहते हैं, कभी अनंत भाग वृद्धि, अनंत भाग वृद्धि, अनंत भाग वृद्धि, एक कांडक तक उतनी उतनी वृद्धि हुई, फिर क्या हुआ, असंख्यात भाग वृद्धि हो गई, फिर अनंत भाग वृद्धि हुई, फिर असंख्यात भाग वृद्धि, फिर बीच में और असंख्यात भाग वृद्धि, वो अलग अलग ऐसे षट स्थान होते हैं, तो ये वही का वही ध्रुव वृद्धि नहीं है वहां पर। वह इस प्रकार से अभी उसको समझाते हैं। सूक्ष्म सांप्रायिक के अंतिम समय में जघन्य अनुभाग स्थान बंध स्थान ही होता है, ये तो हमने पहले भी देखा था। शंका, योग वृद्धि के प्रभाव से सूक्ष्म सांप्राय के अंतिम समय में किसी जीव विशेष में अजघन्य अनुभाग स्थान भी क्यों नहीं होता? प्रश्न में कुछ गलती ख्याल में आती है क्या? कहते हैं अलग अलग जीव सूक्ष्म सांप्रायिक में है, तो किसी का योग ज्यादा है किसी का कम है, तो कहते हैं ऐसे होने से वह अनुभाग किसी को कम और किसी को ज्यादा होना चाहिए कि नहीं चाहिए? मंजू बहन आप क्या कहती है, क्यों नहीं होगा? हाँ, क्योंकि योग जो है वो प्रदेशों में निमित्त है, प्रकृति तो अभी वहाँ की गुणस्थान की डेफिनेट है, तो वो तो उसमें तो प्रदेशों में अंतर होगा योग के डिफ्रेंसिएशन से, तो ये तो जो है वो कषाय से बनते हैं समाध नहीं, क्योंकि योग वृद्धि से अनुभाग वृद्धि संभव नहीं है। शंका, वह कैसे जाना जाता है? उसका समाधान, वेदनीय नाम और गोत्र कर्म का संयोग और अयोग केवलियों में उत्कृष्ट अनुभाग ही होता है, ऐसा चूंकि वेदना स्वामित्व सूत्र में कहा जा चुका है, अतः इससे जाना जाता है कि योग वृद्धि के होने से अनुभाग वृद्धि संभव नहीं है। यदि योग वृद्धि अनुभाग वृद्धि का कारण होती तो यह नियम उचित नहीं था, क्योंकि वैसा होने पर उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट दोनों ही अनुभाग स्थान वहां संभव थे। क्या कहना चाहते हैं? वेदनीय नाम गोत्र का जो उत्कृष्ट अनुभाग संयोग और अयोगी को होता है, यदि योग भी संयोगी में भी अलग अलग जीवों में योग में अलग अलग वेरिएशन हो सकेगा, है ना? संयोगी है वो नहीं, यही तो बताना चाहते ना, उसमें अनुत्कृष्ट भी और अयोगी तो योगी नहीं है, तो वहां भी अनुभाग घटना चाहिए था। ख्याल में आता है? इन्हें ये उत्तर दे रहे हैं ना उनको। हाँ, तो कहते हैं ऐसा तो होता नहीं है, ये बात बताना चाहते। यदि आपके शंकाकार के अनुसार अगर मानेंगे तो वहां भी डिफरेंस हो जाता, उत्कृष्ट अकेला नहीं कह सकते थे, अनुत्कृष्ट भी कहना पड़ता किसी को। अथवा जिस जीव के वेदनीय कर्म की वेदना क्षेत्र की अपेक्षा उत्कृष्ट होती है, उसके भाव वेदना नियम से उत्कृष्ट होती है, इस प्रकार जो वेदना सन्निकर्ष विधान में प्ररूपणा की गई है उससे भी जाना जाता है कि योग की वृद्धि व हानि अनुभाग की वृद्धि व हानि में कारण नहीं है। ये उनका जो दृष्टांत है वो ज्यादा कठिन है, लोक पूर्ण समुद्घात में वर्तमान केवली का क्षेत्र उत्कृष्ट होता है, भाव भी जो सूक्ष्म सांप्रायिक शपक के द्वारा बांधा गया है वह लोक पूर्ण को प्राप्त केवली में उत्कृष्ट भी होता है। भाव यानी बंध कभी हुआ था सूक्ष्म सांप्राय के अंतिम समय में, जो बंध है वो सत्ता में पड़ा है वहां पर, तो कहते हैं भाव भी उसका वहां पर उत्कृष्ट है, लोक पूर्ण को प्राप्त केवली में उत्कृष्ट भी होता है और अनुत्कृष्ट भी होता है। ऐसा न कहकर उत्कृष्ट ही होता है, यदि योग के कारण कम ज्यादा होता तो उसमें वेरिएशन हो जाता, तो भाव तो उत्कृष्ट ही रहता है। अब कौन से भाव की बात होगी? ये प्रशस्त कर्मों की बात है ना, सूक्ष्म सांप्राय के अंत में बंधे हुए संयोग अवयोग में वही अनुभाग रहता है उत्कृष्ट, वो यशस कीर्ति उच्च गोत्र आदि कर्मों की बात है, वहां पर वो तो उत्कृष्ट ही रहता है। इस प्रकार की गई प्ररूपणा से निश्चित होता है कि योग की वृद्धि व हानि अनुभाग की वृद्धि व हानि का कारण नहीं है। उन्होंने अलग अलग करके दो तीन दृष्टांत बता दिए, यह अभिप्राय है। अथवा कषाय प्रावृत में दर्शन मोह क्षपक को छोड़कर सर्वत्र सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट अनुभाग होता है, यह जो कहा है उससे भी जाना जाता है कि योग वृद्धि अनुभाग वृद्धि का कारण नहीं है। ये सम्यक्त्व का अर्थ होता है सम्यक्त्व प्रकृति हो, सम्यक प्रकृति जिसको हम कहते हैं। क्योंकि क्षपणा करने वाले के तो वो है ही नहीं है, अब उसके अलावा अन्य जो जीव है उसमें सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व है, उसका उत्कृष्ट अनुभव होता है ऐसा जो कहा है। यदि योग वृद्धि से वो कम ज्यादा होता बढ़ता तो बता देते ना, उसमें अनुभव बढ़ गया योग के कारण। क्योंकि जो अभी सर्वक्षम सम्यक दृष्टि में उनका अनुभव उत्कृष्ट होता है, ये बात बताई है। योग के कारण उसमें वेरिएशन होता तो वो बता देते हैं। इसी से क्षपित कर्मांशिक स्वरूप से अथवा गुणित कर्मांशिक स्वरूप से आकर सम्यक्त्व को प्राप्त कर 266 सागरोपम परिभ्रमण करके, यानी 266 सागरोपम क्षोभ समय दृष्टि रहा, फिर परिभ्रमण करके दर्शन मोक्षपक अपूर्वकरण का जब तक प्रथम अनुभाग कांडक पतित नहीं होता तब तक सम्यक्त्व सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट अनुभाग ही होता है ऐसा कहा है। यानी वो कहाँ तक होता है, तो 66 सागरोपम तक परिभ्रमण किया, फिर दर्शन मोहक शपक अपूर्व करण, इसका अर्थ क्या है? दर्शन मोहकिक सपना करने वाला जीव तीन करण परिणाम मानता है, यह अपूर्व करण लिखा है, वो गुणस्थान की बात नहीं है। सपना करने के लिए तीन करण परिणामों में से अपूर्व करण में, अपूर्व करण में आता है, कहीं पर भी अपूर्व करण हो तो अपूर्व करण में आते ही चार आवश्यक शुरू हो जाते हैं। पहले तो अनंत गुणी वृद्धि वगैरह वगैरह चार बातें थी, कहीं पर भी अपूर्व करण में आते हैं तो चार बातें और होती है। हाँ, तो गुण संक्रमण गुण श्रेणी वगैरह वगैरह बातें होती है ना, और उसमें आने पर अनुभाग कांडक घात होते हैं और स्थिति कांडक घात शुरू होते हैं, पहले नहीं थे। तो ये कांडक घातों का यहाँ प्रकरण आता है, तो अनुभाग घटेगा ना वहां पर, देखो क्या कहते हैं, तो तब तक वहां जाकर वो अनुभाग घटेगा, अदरवाइज अनुभाग उत्कृष्ट रहेगा, ये बात बताना चाहते हैं। देखो फिर से देखो क्या कहते हैं कि जब वो फिर पढ़ते हैं पूरा पांचवे लाइन से, क्षपित कर्मांशिक स्वरूप से अथवा गुणित कर्मांशिक स्वरूप से आकर सम्यक्त्व को प्राप्त कर 266 सागरोपम परिभ्रमण करके दर्शन मोक्षपक अपूर्वकरण का, यानी क्षपणा के लिए जो अपूर्वकरण मानता है उसका, जब तक प्रथम अनुभाग कांडक पतित नहीं होता, वो पहला दूसरा तीसरा ऐसे चालू हो जाता है वहां से अनुभाग कांडक घात, तो जब तक वो नहीं होता तब तक सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट अनुभाग ही होता है ऐसा कहा है। बंदे की बात कहाँ है? सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्या तो श्रेणी में उदय में, वो तो अंदर पड़ी है, एक सपना वाली की बात है, अब सपना के लिए जो उन्मुख है उसकी बात है, यानी वहां वेदक सम्यक दृष्टि की अपेक्षा ही बात है। अब फिर अन्यथा योग वृद्धि को अनुभाग वृद्धि का कारण मानने पर, यानी अन्यथा मानने पर, यानी योग की वृद्धि होने से अनुभाग की वृद्धि होती है ऐसा अगर मानेंगे, तो क्षपित कर्मांशिक को छोड़कर गुणित कर्मांशिक के द्वारा ही सम्यक्त्व के ग्रहण किए जाने पर सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट अनुभाग होना चाहिए, क्योंकि वहां योग की अधिकता पाई जाती है। हमने देखा था ना, क्षपित कर्मांशिक और गुणित कर्मांशिक के नाम क्यों पड़े, क्षपित में वो सारे हमने देखो सपना अधिक हुई थी और कम परमाणु ग्रहण किए थे, यानी जघन्य योग की बात थी, और गुणित कर्मांशिक में अधिक योग मैक्सिमम पॉसिबल लिया था हमने, तो उसमें वो सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति का अनुभाग अधिक होना चाहिए यदि योग से होना मानते हो तो। देखो एक ही प्रश्न पूछा तो कितनी 6-7 तो उनके दलीलें दी, क्योंकि वहां योग की अधिकता पाई जाती है। देखो अब नीचे से तीसरी लाइन, और ऐसा होने पर दर्शन मोक्षपक को छोड़कर सर्वत्र सम्यक्त्व सम्यक मिथ्यात्व का अनुभव उत्कृष्ट अथवा अनुत्कृष्ट होना चाहिए, यानी यदि योग के कारण मानेंगे तो, परंतु ऐसा है नहीं क्योंकि वैसा उपदेश नहीं है, इसलिए योग अनुभव का कारण नहीं है यह सिद्ध होता है। फिर कहां भी है, जोगा पयड़ी पदे से ठिदी अनुभागे कसायदो कुणदी, हमने गोमर सार में भी पढ़ा था, नीचे देखो, जोगा पयड़ी पदेसा ठिदी अनुभागा कसायदो होंती, ये प्राकृत में से पढ़ा मैंने। हाँ, कहा भी है लिखा ना, क्या कहा है उसका अर्थ देखते हैं। जीव योग से प्रकृति और प्रदेश बंधकों तथा कषाय से स्थिति और अनुभाग बंधकों करता है। क्षपित कर्मांशिक स्वरूप से आकर सम्यक्त को प्राप्त करके 266 सागरोपम काल तक भ्रमण करके मिथ्यात्व को प्राप्त हो, अभी मिथ्यात्व में गया हो, फिर दीर्घ उद्वेलन काल द्वारा सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व की उद्वेलना कर, ये उद्वेलना करता है ने क्या करता है, हाँ उल्टा संक्रमण होता है ना, मिथ्यात्व रूप परिणमित होता है। जब हमने देखा था प्रथम ऑप्शन सम्यक्त्व के काल में मिथ्यात्व में से, उसमें से तीन प्रकृतियां होती है, कैसे होती है, अनुभाग की हीनता होकर होती है, मिथ्यात्व का अनुभाग इतना घटता है फिर भी वो सर्वघाती रूप से ही मिनिमम पॉसिबल रहता है तो वो सम्यक मिथ्यात्व हो जाता है, और देशघाती रूप होता है तो उसको हम सम्यक प्रकृति कहते हैं। ऐसे तीन प्रकृति तैयार होती है, तो तीन प्रकृति बनी रहती बहुत साल तक, तो प्रथम उसमें से वेदक सम्यक तो होगा तो सम्यक प्रकृति का उदय चलता रहता है, और वो अन्य दो प्रकृति उस रूप से परिणमित होती रहती है, संक्रमित होती रहती है। शुरू में उपशम सम्यक तो के काल में गुण संक्रमण था, गुणित प्रमाण में था, बाद में उसका संक्रमण स्लो डाउन होता है, उसको विध्यात संक्रमण कहते हैं, तो ये तो चलता रहता है, यह 66 सागर कहा ना वहां तक उसका चलता रहता है, फिर भी जब सम्यक तो प्राप्त किया था तो वो टुकड़ों की लंबाई कितनी थी, हाँ कितनी थी, सारे कर्मों की स्थिति कितनी कर दी थी, अंत कोड़ा कोड़ी सागर, तो इतने लंबे वो टुकड़े थे बराबर, तो अभी 66 सागर परिभ्रमण करें किया और फिर मिथ्यात्व में गया, मिथ्यात्व में जाने पर मिथ्यात्व की स्थिति तो लंबी बांधेगा, अनेक कोड़ा कोड़ी सागर, अभी 70 कोड़ा कोड़ी समझो, और बाकी दो वो अंत कोड़ा कोड़ी जितनी रही ना, 66 सागर में कितनी निकलेगी उसमें वो पूरी तो पूरी नहीं होगी, तो क्या करता है उसको उद्वेलना करता है, उद्वेलना काल, उद्वेलना का जो काल है यानी बहुत सारा ये वर्षों तक तो उसका क्षोभशम के योग्य काल होता है, वेदक योग्य काल होता है, उतने काल में वो क्षोभशम सम्यक तो मिथ्यात्व में गया तो भी क्षोभशम सम्यक तो प्राप्त करता है, अब उसके एक विशिष्ट लिमिट के ऊपर गया तो अभी उसको उद्वेलना काल चालू हो जाता है, वहां उपशम योग्य होता है परंतु वहां वो उद्वेलन कर रहा है, यानी वो सारे ही मिटकर अभी एक मिथ्यात्व प्रकृति हो जाएगी, यानी सादी मिथ्या दृष्टि अनादि जैसा कहलाएगा, अभी एक ही प्रकृति हो जाती है अभी उद्वेलना के द्वारा, तो वहां क्या कहते हैं उद्वेलना कर, तीसरी लाइन ना नीचे की पैराग्राफ की, उद्वेलना कर दो समय काल प्रमाण एक स्थिति करके स्थित हुए जघन्य सत्व वाले के भी चूंकि सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट अनुभाग पाया जाता है। क्या कहते हैं ये उद्वेलना कर, उद्वेलना तो कुछ एक समय में नहीं होगी, करते 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 जाएगा, फिर भी उसके भी वो थोड़ा बाकी है फिर भी उसका उत्कृष्ट ही अनुभाग है, यानी उसके अनुभाग में कोई वेरिएशन नहीं होता योग के कारण, ये बात बताना चाहते हैं। अतएव इससे जाना जाता है कि समान धन युक्त वृद्धि से अनुभाग की वृद्धि नहीं होती, इससे समान धन वाले बहुत परमाणुओं के होने से अनुभाग की अधिकता होती है, इस आग्रह का निराकरण होता है। क्या कहते हैं उतने 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 अनुभाग वाले बहुत ज्यादा परमाणु है इसलिए अनुभाग बढ़ जाता है, ऐसी बात नहीं, ये बात बता रहे, परमाणु के नंबर पर उसके अनुभाग की वृद्धि या उसका स्थान नहीं कहने में आता। और फिर दूसरी बात, असमान धन वालों की एक पंक्ति की अधिकता अनुभाग की अधिकता का कारण नहीं है। आप कहेंगे समान अनुभाग वालों के न सही, असमान धन वाले की एक ही पंक्ति में बहुत सारे असमान है तो उससे तो अनुभाग बढ़ जाएगा, तो कहते ऐसा भी नहीं है। यह बात केवल ज्ञानावरणीय, केवल दर्शनावरणीय, असाता वेदनीय और वीर्यांतराय, ये चारों ही प्रकृतियां तुल्य व मिथ्यात्व से अनंत गुणे हीन अनुभाग से युक्त है, इस 64 पद वाले उत्कृष्ट अनुभाग संबंधी अल्प बहुत स्वे जाने जाती है। यथा, अब ये चारों को तुल्य कहा है, अब उसको समझाते हैं। वीर्यांत राय के लता समान जघन्य स्पर्धक से लेकर, ये वीर्यांतराय अंतराय प्रकृति की बात है, तो घाती कर्मों में चार प्रकार के स्पर्धक हम नाम देकर समझाते हैं, लता, दारू, अस्थि और शैल। तो कहते हैं लता समान जघन्य स्पर्धक से लेकर एक स्थान, द्विस्थान, त्रिस्थान और चतुस्थान जाकर उत्कृष्ट अनुभाग स्थित है, परंतु केवल ज्ञानावरणीय और केवल दर्शनावरणीय के सर्वघाती जघन्य स्पर्धक से लेकर, उसमें सभी स्पर्धक कैसे हैं? सर्वघाती है। वीर्यांतराय प्रकृति कैसी है? देशघाती है। और उसके स्पर्धक कैसे हैं? देशघाती सर्वघाती, यानी उसमें वो देशघाती भी है, तो वो लता भाग रूप से शुरू हुए हैं। और यहाँ किस में है? वो दारू के भी ऊपर के सर्वघाती वाले वहां से शुरू हुए, क्योंकि दारू भाग वाले में दोनों प्रकार पाए जाते हैं, सर्वघाती भी और देशघाती भी। केवल ज्ञानावरणीय सर्वघाती प्रकृति है, उसके सभी स्पर्धक सर्वघाती ही होते हैं। पहले तो उनका अनुभाग उत्कृष्ट के अपेक्षा समान कहा था, फिर भी डिफरेंस है ना उनमें, क्या डिफरेंस वो बता रहे। देखो, केवल ज्ञानावरण केवल दर्शनावरण के सर्वघाती जघन्य स्पर्धक से लेकर दारू समान अनुभाग का अनंत अनुभाग जाकर, दारू बहुभाग, अनंत बहुभाग, अनंत से भाग देकर एक भाग अलग निकालना, उसको तो हम देशघाती स्पर्धक कहते हैं, और जो दारू का जो बहुभाग है अनंत बहुभाग, उसको हम सर्वघाती। तो वहां से लेकर इससे आगे त्रिस्थान व चतुस्थान जाकर उत्कृष्ट अनुभाग अवस्थित है। यहां केवल ज्ञानावरणीय और केवल दर्शनावरणीय के अनुभाग स्पर्धकों की पंक्ति से वीर्यांतराय के अनुभाग स्पर्धकों की पंक्ति बहुत है, उसमें ज्यादा स्पर्धक है, क्योंकि लता भाग से लेकर ऊपर तक सभी है, और केवल ज्ञानावरण में दारू के अनंत भाव भाग और वो अस्थि वाले और शैल वाले हैं, तो स्पर्धकों की संख्या किस में ज्यादा है? वीर्यांतराय में। इतने मात्र से वह बहुत है, ऐसा पूछते हैं। वह लता समान, सॉरी, कितने मात्र से अधिक है ये पूछ रहे, इतने मात्र से, कितने मात्र से अधिक है? हमने स्पर्धकों की पंक्तियां की, केवल ज्ञानावरण केवल दर्शनावरण में कहां से स्पर्धक शुरू हुए? दारू बहुभाग से। हम देखते ना, हम मान लेते ये लता वाले इतने हैं, फिर ये दारू वाले हैं, और फिर ये अस्थि वाले और शैल वाले। वीर्यांतराय के लता से लेकर सभी है, और केवल ज्ञानावरण के ये दारू वाले भी अनंत बहुभाग से लेकर ऊपर के सभी हैं। तो कितने मात्र से इसमें ज्यादा है? हो गया समय, एक इतना पढ़ लेते। तो लता समान अनुभाग स्पर्धकों तथा दारू समान अनुभाग स्पर्धकों के अनंत में भाग मात्र अधिक है, जो सर्वघाती स्पर्धक ऊपर शुरू हुए और नीचे देशघाती स्पर्धक तो उतने उसमें ज्यादा है। इसी कारण उक्त चार कर्मों के अनुभाग की समानता उचित नहीं है, यदि वो स्पर्धकों की अपेक्षा मानेंगे तो। उसमें अधिक स्पर्धक है, विसदृश अधिकों की कारण वो अधिक होते, ऐसा अगर मानेंगे तो सबको एक समान नहीं कह सकते। परंतु सूत्र में सदृशता बतलाई गई है, इससे जाना जाता है कि असमान धन वाले एक पंक्ति रूप परमाणुओं के अनुभाग के मिलाने पर भी अनुभाग स्थान नहीं होता, अनुभाग स्थान उसके टॉप मोस्ट से होता है। हाँ, तो इसे सारा लंबा चौड़ा सिद्ध कर दिया, अब यहीं रुकेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो प्रेरणा।